मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 7 अप्रैल 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अभिनव सम्राट पटना बिहार से, ओम प्रकाश राय आपका गाँव है बभनौली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, नितिन विश्वकर्मा ठाणे महाराष्ट्र से, आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, मानसिज गुप्ता बांदा उत्तर प्रदेश से और मोहित मिश्रा उत्तर प्रदेश से। मित्रों आज के मुख्य विषय के तहत मैं सांसद निधि पर आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। 3 दिनों के बाद मैं हाजिर हो सका हूं और चूंकि कल बकायदे गजटेड हॉलीडे थी तो इसलिए दोस्तों गजटेड हॉलीडे को आप जानते हैं कि हम लोगों का डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन आपको बकायदे प्रेस क्लिपिंग्स पढ़ने को मिली होंगी। और अब चूंकि इस बीच में कुछ और दूसरी छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं तो उन सबको आधार बना करके मैं कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं। इस समय आप 2 शब्द काफी कुछ सुन रहे हैं, एक शब्द है क्वारंटाइन और दूसरा है आइसोलेशन। सच पूछे तो दोनों का जो स्वरूप है वो काफी कुछ एक जैसा ही है। क्वारंटाइन में भी जिस उस व्यक्ति को अलग थलग रख दिया जाता है और आइसोलेशन में भी उसे अलग थलग रखा जाता है, अकेला रखा जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। तो जो स्वरूप होगा दोनों का वो लगभग लगभग एक सा ही होगा, लेकिन दोनों एक नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए और हो सकता है कि आप जानते भी हों। आप याद कीजिए कि जब जनवरी में इसकी चर्चा शुरू हुई थी कोरोना वायरस की, तो अखबारों में आपको खबरें पढ़ने को मिल रही थी कि हमारे बहुत से जो एयरपोर्ट हैं उन एयरपोर्ट पर जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनका बकायदे चेकअप हो रहा है, और अगर चेकअप नहीं भी हो पा रहा है तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। यानी कि जो भी विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं उन्हें 14 दिन अलग से रखा जा रहा है, और इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास ये व्यवस्था की गई है, फलानी एयरपोर्ट के पास इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये क्वारंटाइन के बारे में है, ठीक है। इसके बाद फिर आप आइसोलेशन के बारे में सुनते हैं। आइसोलेशन के बारे में अभी आप जब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब तो इसकी स्थिति भारत में काफी हो रही है आइसोलेशन की, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति को जब टेस्ट किया गया तो लगा कि इसको कोरोना वायरस है, और फिर जब टेस्ट पे पॉजिटिव आया तो फिर उसको आइसोलेशन में भेज दिया गया, अब वो आइसोलेशन में चला गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि दोनों अलग थलग रह रहे हैं, यानी कि दोनों के निकट जाने की अनुमति नहीं है, और उससे भी कहा जा रहा है कि आप दूसरों से मिलिए जुलिए नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों से मिलेंगे जुलेंगे तो जो आपके अंदर जो वायरस है उस दूसरों तक वो पहुंच सकता है, जिसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, कंटेजियस डिजीज है, इसीलिए उनको अलग थलग रख दिया जाता है। तो दोनों में देखिए जो फर्क है, मैं केवल न्यूज के आधार पर बता रहा हूं, और खासकर मैंने इसकी चर्चा इसलिए की है ताकि अगर कहीं आपको सीधे पढ़ने को न भी मिले तो आपके दिमाग में सेंस आ जाना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है। अब आप दोनों बातों को जोड़ करके देखिए कि फॉरेन से कोई भी आ रहा है तो उसे क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, और दूसरी बात मैंने बताई कि जब किसी के अंदर पॉजिटिव पाया जा रहा है कोरोना वायरस है तो उसको आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। इसी के आधार पर आप आराम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति है केवल संभावना भर है, चूंकि विदेश से आया है तो हो सकता है कि कहीं इसको संक्रामक हो न गया, केवल संभावनाओं के आधार पर जिनको भेजा जा रहा है अलग थलग रखा जा रहा है वो क्वारंटाइन में है, लेकिन जिनमें पॉजिटिव मिल रहा है यानी कि जिनमें वायरस के लक्षण मिल गए हैं उन्हें जब अलग थलग रखा जा रहा है तो वो आइसोलेशन में है। दोनों को रखा अलग थलग ही जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि वो आइसोलेशन में है तो आप समझ जाइए कि उसमें पॉजिटिव उसके रिजल्ट आए हैं, वायरस है उसमें, और अगर क्वारंटाइन में रखा जा रहा है तो केवल एहतियात के तौर पर है, जरूरी नहीं कि उसमें वायरस आ गया हो। तो ये जो 2 शब्द हैं इन 2 शब्दों के अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। ठीक इसी तरह से दोस्तों अखबारों में 1-2 दिन के अखबारों में आपने एक मेडिसिन का नाम पढ़ा होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये एक दवाई है, भारत में बनने वाली दवाई है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफी कुछ चाइना से आता है। इसके बारे में तब ये खबर बनी थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री से फोन पर बात करके और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये मेडिसिन हमारे यहाँ भेजिए, और उसके बाद से भारत ने इस मेडिसिन के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। देखिए यहां जो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था वो इस मायने में आप समझिए कि जो हमारे SEZ एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, है ना, उनको एक फैसिलिटी है कि वो किसी भी चीज का उत्पादन करें तो वो निर्यात कर सकते हैं, तो उस पर सरकार ज्यादा नियंत्रण रखती नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बात आई वैसे ही उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और आपको मालूम है कि केवल इसी मेडिसिन पर नहीं बल्कि और भी दूसरी बहुत सी मेडिसिन हैं जिन पर जिनके निर्यात पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें पैरासीटामोल जो दर्द की दवाइयां होती हैं, विटामिन्स वगैरह हैं, जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं और जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं, इन सब के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा एहतियात के तौर पर किया गया है कि अगर हमारे यहाँ कोरोना वायरस का तांडव कुछ ज़्यादा ही बढ़ा तो हमारे पास अपनी मेडिसिन होनी चाहिए ताकि हम अपने लोगों का इलाज कर सकें। अब ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ये बेसिकली क्या है, ये मलेरिया में काम आने वाली दवाई है। जब किसी को मलेरिया होता है तो ये दवाई दी जाती है और उसका मलेरिया धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वैश्विक स्तर पर ये देखा गया है, या यूं कह लीजिए कि ये पाया गया है कि जो मलेरिया की दवाई है वो कोरोना वायरस को खत्म करने में सहायक है। अमेरिका में जो स्थिति है उस स्थिति को आप देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, तो इसीलिए राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन चूंकि हमारे यहां भी कोरोना वायरस फैलता चला जा रहा है उसको देखते हुए हमने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। तो आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है ये बेसिकली मलेरिया में काम आने वाली दवाई है, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में इसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए। इस तरह के कुछ और भी बातें हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब समय को देखते हुए बेहतर होगा कि मैं आज के मुख्य विषय पर आऊं और वह है सांसद निधि। ये सच पूछे तो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक जैसा है, और सांसद निधि को मैंने अभी इसलिए चुना है क्योंकि आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। सरकार ने निर्णय ये लिया है कि जो हमारे जितने भी सांसद हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, याद रखिए केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नहीं है, एमएलए के लिए नहीं है। एमएलए के लिए अगर कुछ ऐसा निर्णय लेना होगा तो वो राज्य की सरकारें लेंगी, है ना, राज्य की विधानसभा लेगी, राज्य की सरकार लेगी। हाँ, यदि सरकार ने वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया होता तब फिर उनके बारे में भी सरकार निर्णय ले सकती है, और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में तो सरकार केवल ये नहीं कि एमएलए और एमपी के बारे में ही, वो किसी के बारे में भी निर्णय ले सकती है कि इनके वेतन में कटौती की जाएगी। तो फिलहाल सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ सांसद हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा के मेंबर भी शामिल हैं और राज्यसभा के भी मेंबर शामिल हैं, इनके वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। एक साल के लिए 30% की कटौती की जाएगी, यानी कि उनका वेतन कम कर दिया जाएगा, और इससे उम्मीद है कि 28-29 करोड़ रुपए सरकार को मिल जाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो धन है वो तो फिर हमारी संचित कोष में चला जाता है, संचित निधि में जमा हो जाता है, ताकि सरकार उसका इस्तेमाल अभी जो कोरोना से फाइट करने में, मुकाबला करने में जो धन की जरूरत महसूस हो रही है उसकी थोड़ी पूर्ति हो सके। इसी के साथ ही साथ जिसका संबंध हमारे आज के विषय से है वो है सांसद निधि। सांसद निधि के तहत अभी प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ये 2 किस्तों में दिए जाते हैं, और इसका पर्पज यह होता है कि ये जो सांसद हैं अपनी इस निधि का उपयोग अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कर सके और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कर सके, मतलब सामुदायिक विकास के लिए कर सके। देखिए विकास की योजनाएं तो वैसे चलती रहती हैं, राज्य सरकार विकास की योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार विकास की योजनाएं चला रही है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं, छोटे छोटे काम, कि वहां के लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लेकिन वो इन योजनाओं में शामिल नहीं हो पाते। तो सांसदों को कुछ निधि दी गई है जो वर्तमान में 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है, जिसके लिए बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए किए जाने की मांग की जा रही है, और इससे संबंधित जो समिति थी उसने रिकमेंड भी कर दिया है कि 10 करोड़ रुपए कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा किया नहीं गया है। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये जो सांसद निधि है ये सस्पेंड किया जा रहा है, अब ये उन्हें नहीं दिया जाएगा, और ऐसा 2 साल तक किया जाएगा, यानी कि 2 साल तक उन्हें यह धन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप सोच करके देखिए कि इसके जरिए कितना धन इकट्ठा हो जाएगा। लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर 8,000 करोड़ रुपए 2 साल में इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब 1 साल में लगभग लगभग 4,000 करोड़ रुपए इसमें इस इसके तहत दिए जाते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1993 में एक स्कीम आई थी, उस समय पीवी नरसिंहा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक स्कीम की शुरुआत की गई थी 1993 में और उस स्कीम का नाम था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाम से देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया एलए, डेवलपमेंट स्कीम डीएस। तो इसका पूरा नाम हो गया एमपीएलएडीएस 1993 में, और उस समय इसके तहत प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 लाख रुपए दिए गए थे। अब वो 5 लाख रुपए बढ़कर के 5 करोड़ रुपए हो गए हैं, और स्वाभाविक है, चलिए इन्फ्लेशन भी होता है, महंगाई भी बढ़ती है, तो उस हिसाब से वो चिंता की बात नहीं है। तो इसके तहत बकायदे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें जब लगता है कि नहीं ये सामुदायिक हित की चीज़ है, यहाँ ये बनना चाहिए, यहाँ ये बिल्डिंग बन जानी चाहिए, फलाना बांध बन जाना चाहिए, तो उसके तहत ये रिकमेंड करते हैं। याद रखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल उस योजना को रिकमेंड करते हैं और फिर वो योजना कलेक्टर के पास जाती है, और कलेक्टर से स्वीकृत होने के बाद फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बकायदे उतना धन की स्वीकृति दे देते हैं, तो फिर वो उतना पैसा रिलीज हो जाता है और फिर वो काम होने लगता है। इसका जो सबसे नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि इसके तहत जो धन दिया जा रहा है, अधिकांश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसीलिए बीच बीच में ये भी बात कही जाती है कि इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका समुचित तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, कहीं गलत उपयोग हो रहा है और कहीं बिल्कुल उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इतने अधिक धन को ब्लॉक करके रखने का क्या लाभ है? लेकिन आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इस अधिकार को नहीं खोना चाहेंगे, क्योंकि देखिए होता यह है कि पब्लिक के प्रति वही जवाबदेह हैं, है ना, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक के बीच में जाते हैं, जिन्होंने उनको मेंबर बनाया है लोकसभा राज्यसभा का, राज्यसभा का मेंबर तो खैर चली पब्लिक नहीं बनाती है, तो उनके प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। तो वो जब छोटे छोटे कामों के लिए डिमांड करेंगे, तो अगर उसके उनके पास अपना पैसा नहीं होगा तो वो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कलेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे और किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, और सरकारी योजनाओं में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो धन की आती है कि भैया पैसा नहीं है, तो कम से कम इनके पास कुछ तो पैसा है जिससे छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं। तो योजना तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते कि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो सांसद निधि के बारे में ये दोस्तों मैंने थोड़ी सी आप सबसे बातें की हैं। जहां तक न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रागिनी शर्मा, नितिन अग्रवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, प्रमोद कुमार नवादा बिहार से, शिवांश अनूप राज, हिमांशी यज्ञ सैनी अखिल उत्तराखंड से, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, और मोनिका मलिक अहुलाना हरियाणा से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।